ओम शांति। हंसवाहिनी वीणा वादिनी विद्या की देवी सरस्वती आपके जीवा पर सदा विराजमान रहेगी। आप हर की पौड़ी है ऐसे सुंदर वरदानों से जिसको स्वयं परमात्मा ने सजाया है, वो महान विभूति आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम एक हाथ हिलाकर रूहानियत की खुशबू बिखेरते हुए दीदी का स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। पुष्प गुच्छ देकर भी बहने दीदी का स्वागत करना चाह रही हैं। दीदी बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। आप मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1969 में आपने बीएससी के एग्जाम्स देकर मधुबन में आए। और यहाँ पर बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो प्रथम टीचर्स ट्रेनिंग चली उसमें आपने पार्टिसिपेट किया और टीचर बनकर तैयार हुए। दादियों ने बाबा ने आपको सेवा अर्थ बाहर भेजा देश और विदेश में, जैसे कि पहले राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद, नेपाल, मॉरिशस, अफ्रीका आदि आदि स्थानों पर आप 1969 से 76 तक सेवाएं करते रहे। बाबा के बच्चे तैयार किए, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने और 76 में जब आप मधुबन में आए तो एक स्वर्णिम अवसर आपका इंतजार कर रहा था और वो था मधुबन निवासी बनने का स्वर्णिम अवसर, जिसको आपने सहर्ष स्वीकार किया। तो 1976 से आप इसी मधुबन धरनी पर रहकर अब तक पूरे विश्व में सेवाएं दे रहे हैं। 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके बाबा का नाम विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया है। कोने कोने से बाबा के बच्चे तैयार किए हैं। वर्तमान में आप हमारे राजयोग शिविर के निर्देशिका हैं। हमारी जो एजुकेशन विंग है उसके आप उपाध्यक्षा हैं और इस मधुबन आंगन में जो देश विदेश के प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक भारतवासी भाई बहनों की भट्टियों के प्रोग्राम और फिर अक्टूबर से लेकर मार्च तक विदेशी भाई बहनों के प्रोग्राम, तो साल भर जो प्रोग्राम चलते हैं ज्ञान योग के उसके आप कोऑर्डिनेटर हैं। और यूं तो बहुत सारी अन्य जिम्मेदारियां भी होती हैं जिनका वर्णन शब्दों में कर नहीं पाते हैं। तो अनेकानेक जिम्मेवारियां संभालते हुए मुख्य जिम्मेवारी जो वर्तमान में हम देखते हैं कि जो पालना दादियों से मम्मा बाबा से इन्होंने ली है और अब चूंकि मम्मा बाबा दादियां सब अव्यक्त हो गए हैं लेकिन बाबा के नए नए बच्चे इस बाबा की धरनी पर आते ही रहते हैं, तो वो दादियों का प्यार, वो मम्मा बाबा का प्यार, वो पालना, वो भासना सर्व को मिले उस सेवा में आप सदा हाजिर रहते हैं। आज हमारे बीच में है भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए। और भट्टी का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, महसूसता द्वारा परिवर्तन, वो तो बहुत बड़ा है लेकिन छोटे छोटे कदम उठाते हुए हम बड़े टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो विशेष बेहद का वैराग्य धारण करके कैसे हम महसूसता द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इस विषय पर आप प्रकाश डालेंगे। तो सुनते हैं दीदी को, आदरणीय दे दीजिए।
आप भी परिचय दो अपना, अपना परिचय दो। दे दिया, दे दो।
शरीर का नाम इंदिरा बहन है और घर बैठे बाबा का ज्ञान मिला 1987 में और समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ हुई 1998 में। शुरू के 5 साल ज्ञान सरोवर अकेडमी में स्पार्क ऑफिस में सेवा करने का सौभाग्य मिला, जहां पर सेवा करते करते एक पुस्तक लिखने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया, जो पुस्तक इतनी मोटी है, जिसका नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा। उस किताब के लिए बाबा ने खुद उसको रिलीज किया था और उस किताब के लिए जो संदेश दिया था वो बाहर नोटिस बोर्ड पर भी है और नीचे जो ग्लोबल ऑफिस है उसके भी बाहर जो डिस्प्ले बोर्ड है वहाँ पर वो किताब रखी हुई है। तो वो किताब लिखने के निमित्त बने और उसके बाद चूंकि हम नागपुर सब छोन से निकले हैं तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहना हुआ और चूंकि हम स्पार्क से जुड़े हुए ही थे, मतलब उषा बहन और रमेश भाई से जुड़े हुए थे, नागपुर के बाद उन्होंने गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया और चूंकि हमारी सेवाओं की शुरुआत तो हेडक्वार्टर से हुई थी, बाबा ने पुनः हेडक्वार्टर में अवसर दिया। वर्ष 2009 से हम इसी मधुबन आंगन में रहकर शीलू दीदी की जो ग्लोबल ऑफिस है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो उनकी सेवाएं हैं उसमें हम अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने 3 बार ओम शांति कहना सिखलाया। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, हर बार दादी जानकी हमें याद दिलाते थे। तो बहुत सुंदर, आप सभी इतना दूर बनारस सब जोन से पहुँचे हैं, हमारी सुरेंद्र दीदी भी आ गए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। तो मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाप माँ की कर्म भूमि, सर्व दादियों की भी तपस्या भूमि, ऐसी भूमि पर आप सभी बट्टी करने आए हैं। तो इन सब की तरफ से और हमारी तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब अपने लिए जरूर ताली बजाएं। बट्टी करना माना पकना, जैसे बट्टे में पकते हैं ना, आग में जलना, बट्टी माना परिवर्तन होना, बट्टी माना स्वच्छ होना, बट्टी माना सब अवगुण निकल जाना। जैसे अग्नि में कोई भी चीज पड़ती है तो वापस वही रूप नहीं होता है, बदल कर ही उस अग्नि से निकलती है। सोना शुद्ध हो जाता है, मिट्टी ईंट बन जाती है, कोयला राख बन जाता है, किचरा जल जाता है, नरम चीज स्ट्रांग हो जाती है और जो कठोर चीज है वो नरम हो जाती है। मानो परिवर्तन ये अग्नि का विशेष गुण है। तो योग बट्टी भी माना परिवर्तन होने के लिए आए हैं और इस साल की जो थीम है वो भी यही है, पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन। वैसे देखा जाए जीवन में क्षण क्षण परिवर्तन तो होता ही रहता है, और यह संसार चक्र जो मिसल चलता ही रहता है, फिरता ही रहता है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है ये एक विशाल परिवर्तन की का संकेत दे रहा है। सतयुग से कलयुग कैसे हो गया पता भी नहीं चला होगा, लेकिन कलयुग से फिर सतयुग होना उसके लिए एक महान परिवर्तन होने के लिए शिव बाबा को आना पड़ता है। इसीलिए शिव बाबा को क्या कहते हैं, रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, जिनका भी अब मुख्य पाठ चलता है संगम युग पर परिवर्तन करने का। आत्माओं को तो परिवर्तन करते ही हैं, प्रकृति को भी परिवर्तन करते हैं, और ऐसी वेला में हम सब इस संगम युग पर चल रहे हैं। बाबा ने आते ही हम सबको बहुत बड़ा लक्ष्य दिया। आते ही बाबा ने कहा तुमको देवता बनना है। ब्रह्मा बाबा को भी यही कहा, विष्णु ने भी यही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। और उसके लिए बाबा ने हमसे प्रतिज्ञा भी कराई, क्योंकि देवता बनने के लिए जीवन को पवित्र बनाना पड़ेगा, योगी बनाना पड़ेगा। तो शुरू में ही बाबा ने ये सबसे प्रतिज्ञा कराई कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, और उसी प्रतिज्ञा के बल से, पवित्रता और योग के बल से आज यह विश्वविद्यालय चहुओर फैल चुका है। ब्रह्मा बाबा एक ने अपना बीज डाला तन मन धन का, और आज वट वृक्ष की तरह यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में फैला हुआ है। तो इन सब का आधार क्या है, पवित्रता और योग, जो शुरू से ही बाबा ने नींव डाली। हमारी दादियां 14 साल जिन्होंने तपस्या की, उन्होंने वो नींव डाली, जड़ें मजबूत की, और आज इतना बड़ा विस्तार हो गया है। उन्होंने बाबा मम्मा से प्रेरणा ली, और हम सब ने दादियों से प्रेरणा ली। लेकिन इन सब का आधार क्या था, जो भगवान ने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया, जो बाबा कहते हैं केवल मैं ही दे सकता हूं। तो जिस प्रकार परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, तो आज भी बाबा ने कल बताया, भारत भूमि की भी महिमा अपरम अपार है, साथ में स्वर्ग की महिमा भी अपरम अपार है, गीता की भी महिमा अपरम अपार है, और जो भगवान ने संगम पर आकर ज्ञान दिया उस संगम की भी महिमा अपरम अपार है, और संगम पर ब्राह्मणों को रचा ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा और ब्राह्मणों की भी महिमा अपरम अपार है। हर मुरली में बाबा हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं, और जितना ही नशा चढ़ाते हैं, जितनी ही हमारी महिमा करते हैं, टाइटल्स देते हैं, उतना ही फिर बाबा हमको हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराते हैं। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलता है, बिना कर्तव्य किए अधिकार नहीं मिलता है, अथवा अधिकार तभी अनुभव होता है जब उसके लिए पहले कर्तव्य का पालन करें। तो अधिकार तो बाबा ने बहुत दे दिए टाइटल के रूप में, इतनी महिमा हमारी गाये, पर फिर कर्तव्य का भी बोध कैसे कराया, बच्चे तुमको ही नई दुनिया स्थापन करनी है, तुम ही उस दुनिया के मालिक बनोगे, सारे विश्व पर तुम्हारा ही राज्य होगा, पर उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, मासी का घर नहीं है जो सहज चले जाओ, मेहनत बहुत जरूरी है। और क्या मेहनत बाबा ने दी, बस पवित्र बनो योगी बनो, यही मेहनत दी। और इसी मेहनत में ही कई बच्चे जीत पा लेते हैं और कई बच्चे हार जाते हैं, क्योंकि बाबा ने लक्ष्य तो बहुत ऊंचा दिया, परंतु माया रूपी अपोजिशन वो भी कम नहीं है। आधा कल्प हम माया के मुरीद रहे, और फिर जब बाबा के बनते हैं तो माया पर जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और अगर हम श्रेष्ठ बन जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं, हम महारथी बन जाते हैं, रुस्तम बन जाते हैं, तो माया भी रुस्तम बन करके लड़ने लगती है। तो बाबा कहते हैं कि जो महावीर है उनसे ही माया लड़ती है, जो ऊंच पद पाने वाले हैं उनका ही सामना करती है। अब जो प्रजा पद पाने वाले हैं, छोटा मोटा पद, उनसे क्या लड़ेगी, क्योंकि वो तो माया के बुरीदी है, वो तो छोटा मोटा ही पद पाएंगे। लेकिन जो वारिस बनते हैं, पूरा फॉलो करते हैं, उनके सामने ही माया सामना करती है, वार करती है, और उसमें अगर विजयी हो गए तो फिर विजय माला के मणके बन जाएंगे। लेकिन तब तक युद्ध है। पर फिर बाबा ये भी कहते हैं, तुम योगी हो, तुम योद्धे नहीं हो, पर फिर भी युद्ध स्थल पर खड़े हो। अर्जुन को भी गीता में भगवान ने यही कहा, तुम युद्ध स्थल पर खड़े हो, अब युद्ध करो, डरो मत, नष्टो बुहा बनो, वैराग्य धारण करो, इन सब को मारो। लेकिन अर्जुन मोह के वश था, और यही उनकी शिकायत थी, कैसे मारूं, कैसे मारूं, मेरे मामा चाचा काका गुरु गुसाई ये इतने सारे जो मेरे वडील, मैं इनको मार डालूं, ये कैसे मैं करूंगा, ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उनके प्रति मोह था। और फिर भगवान ने कहा कि आप केवल मुझे देखो, बस मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो, ये तेरे तुम्हारे मामा चाचा काका ये सब मरे पड़े हैं, मेरे से सर्व संबंध जोड़ो, मेरे में मन लगाओ। तो अर्जुन की फिर वही शिकायत, कैसे लगाएं मन, ये मन तो बड़ा चंचल है, मन तो बड़ा पापी है, दुष्ट है, नीच है, घोड़ा है, बेलगाम दौड़ता रहता है, मन तो वश में होता ही नहीं है। आज तक भी भाई बहने यही शिकायत करते हैं, क्या करें बहन जी, बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं। शिकायत है कि नहीं है, कि नहीं रही, अभी शिकायत पूरी हो गई, जो समस्या भी कोई शिकायत नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आते, वो हाथ उठाओ, देखो कितने हाथ उठाते हैं। ठीक, सच बताते, इसका मतलब बाकी सबकी ये शिकायत है। तो अर्जुन ने भी यही शिकायत की, तो भगवान ने उनको बहुत अच्छी युक्ति बताई, कैसे मन को वश कर सकते हो, और उसके लिए दो कदम बताए। पहला कदम बताया वैराग्य, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं है तब तक मन वश में नहीं हो सकता है, असंभव है। और वैराग्य का अर्थ ये भी नहीं है कि सब छोड़ देना, वैराग्य का अर्थ है राग रहित, मोह रहित, मेरा मेरा रहित। और फिर दूसरा कदम बताया अभ्यास। तो पहला कदम वैराग्य, जब तक वैराग्य नहीं है तब तक कहाँ योग लगेगा, मन बुद्धि भटकते ही रहेंगे। और वैराग्य लाने के लिए भगवान ने कहा, ये निश्चय करो तुमको कौन सुना रहा है, ये कौन कह रहा है वैराग्य लाओ। भगवान, स्वयं भगवान कह रहे हैं, ये न सतयुग में कहा, न त्रेता में कहा, न द्वापुर में कहा, न कलयुग में कहा, केवल इस संगम पर ही भगवान ये श्रीमत देते हैं वैराग्य के। क्योंकि अब घर जाना है, अब दुनिया बदल रही है, ये जो हम देख रहे हैं ये बहुत समय नहीं चलेगा, परंतु इस परिवर्तन से पहले हमको अपना परिवर्तन करना है, और उसके लिए बाबा कहते हैं वैराग्य। पर वैराग्य के लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं, क्या कहते हैं, बस मोहब्बत में रहो। इसीलिए कल संडे की मुरली में यही था, बाबा किसको देख रहे हैं, जो स्नेह में समाये हुए बच्चे हैं। अगर स्नेह में समाये हुए हैं तो और कुछ दिखाई नहीं देगा, अगर लहरों में लहरा रहे हैं तो बहुत कुछ दिखाई देगा, पर अगर सागर की गहराई में चले गए, अंदर चले गए, तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम कई बार कहते हैं ना, तीन प्रकार की याद है दुनिया में। एक याद है जो हम करते हैं, भगवान को भी हम करते हैं, याद करते हैं। दूसरी याद है जो आती है याद, तीसरी याद है जो सताती है। परंतु ईश्वर की याद तो चौथी प्रकार की याद है। याद आना, याद करना, याद सताना नहीं, पर याद में समाना, समाना, और समा गए तो समान बन गए। इसीलिए समाधि, समाधि माना सम बन गए, उसमें समा गए। तो बाबा भी हमें यही कहते हैं कि उस प्रेम में खो जाओ। कैसे प्रेम में खोए, क्योंकि एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ सहज वैराग्य आ जाता है। जैसे एक कन्या विवाह करके ससुराल जाती है और उस अपने पति से इतना प्रेम है जो मायका भूल सकती है, सहज भूल जाती है, सारा जीवन माँ बाप के पास रही, लेकिन जब पति का प्यार मिला तो माँ बाप को भूलना सहज मुश्किल नहीं है। पर हाँ, नहीं मिलता प्यार तो माँ बाप याद आते हैं। तो भगवान हमको इतना प्यार दे रहे हैं, रोज भगवान की मुरली हम सुनते हैं, चार पेज का लव लेटर हमको रोज मिलता है ना। बाबा क्या कहते हैं, मुरली क्या है, क्या है मुरली? हाँ, लव लेटर है, देखो। तो भगवान का प्रेम मुरली द्वारा हमें मिलता है, और उस प्रेम में इतना खो जाओ जो और किसी का प्यार आकर्षित ही न करे। मुझे याद है जब कुमारियों की ट्रेनिंग की बात चल रही थी, तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त बाबा ने कहा कि यहाँ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखो मधुबन में। तो पहली कुमारियों की ट्रेनिंग रखी थी, उसमें हम सब कॉलेज गोइंग कुमारियाँ थी, कॉलेज पढ़ करके आई थी। आशा बहन ORC की, वो भी कॉलेज पढ़ के आई थी। चंद्रिका बहन, वो भी कॉलेज की थी। आरती बहन, ये सब हम सब एक ही लेवल के। तो हम सब आए थे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और बाप दादा ने 69 में ये प्रश्न हम कुमारियों से पूछा कि बाबा कुमारियों को इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि बाबा कुमारियों की कितनी महिमा करते हैं, मुरलियों में कुमारियों की को इतना प्यार क्यों करते हैं। तो हम लोग करीब 30 कुमारियां थी उस समय, उतनी थी। और भाई अंदर में लक्ष्य रखा था कि अभी हम बाबा की सेवा में लग जाएंगे। तो हर एक कुमारी ने अपनी अपनी ओर से जवाब दिया, क्योंकि पवित्र है, कन्याएं स्वतंत्र है, फ्री है, कोई बंधन नहीं, आदि आदि बहुत अच्छी बातें सुनाई। बाबा ने फिर भी कहा और अभी और क्या हो सकता है। तो बाबा ने विचित्र जवाब दिया। बाबा ने कहा कुमारियों को बाबा इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं और किसी के प्यार में फंस न जाए। समझ गए? और किसी के प्यार में फंस न जाए। तो और किसी के प्यार में तब नहीं फंसेगी जब बाबा से इतना प्यार मिलेगा। अब बताओ, कुमारियों ने तो सोचा ही नहीं था। पर सचमुच वो बात इतनी छप गई हम सब के मन में कि भगवान जैसा प्यार और कौन कर सकता है। और दादी जानकी ने हमारी वो ट्रेनिंग कराई। सब दादियां थी उस समय, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कराची से भारत में आए और सेवा केंद्र चारों ओर खुलते गए, तो बाबा ने जो दादियां थी जिनकी जिनको इतनी पालना दी, इतनी शक्ति भरी, उन सबको सेवा केंद्रों पर भेजा और अलग अलग शहरों में गए और सेवा केंद्र खोले। तो विस्तार हो गया सेवाओं का। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए, तो बाप दादा ने इशारे में कैसे सब बड़ी दादियों को मधुबन बुला लिया। दादी प्रकाशमणि भी कहाँ मधुबन में रहते थे, वो तो बॉम्बे में रहते थे। मम्मा के बाद दीदी को बुला लिया, वो दिल्ली में रहती थी। कितनी दादियां, दादी चंद्रमणि तो अमृतसर में रहते थे। तो दादी ने फिर दादी को पहले रखा, फिर सब और दादियां को मधुबन में बुलाया, और हम सब की ट्रेनिंग जो थी वो इन दादियों ने कराई, और इतना बल भरा। तो कैसे इन दादियों ने फिर हम लोगों को वो शक्ति भरी और हम सब सेवा केंद्रों पर गए, और आज देखो कितनी बाबा की सेवाएं हो रही है। तो देखो, ये इतना प्यार दिया दादियों ने, जैसे बाबा मम्मा प्यार देते थे। जो मधुबन में आते थे, बाबा मम्मा बहुत प्यार देते, बहुत ध्यान देते थे, बहुत ध्यान, इतना ध्यान रखते थे जो हम अरे घर में भी हमारा कोई ध्यान नहीं रखेगा ऐसे, इतना बाबा देते थे। तो सहज ही फिदा हो गए। हर हफ्ते दो बार बाप दादा आते थे कुमारियों से मिलने के लिए। एक एक कुमारी को इतना बाबा वरदान देते थे। तो और फिर और कहीं मुड़ के देखा ही नहीं कि आगे भी कुछ पढ़ना है। बस धक से स्वाहा हो गए, क्योंकि इतना प्यार मिला। और उस स्नेह के आधार से इतना निश्चय बढ़ गया कि जो भगवान हमें कह रहे हमको करना है बस। अर्जुन की भी इतनी जो दिखाते हैं कि वो क्यों शिकायत करता था, क्योंकि वो निश्चय की कमी थी, निश्चय की कमी थी। वो तो अपना मित्र समझ रहा था कृष्ण को, श्री कृष्ण को, और मित्र मुझे कह रहा है। तो मित्र ने उसको बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी वो कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। तो सारी गीता आप देखेंगे वो वैराग्य लाने के लिए ही गीता है। सबसे पहले तो अर्जुन को यही कहा कि आप इनको आत्मा देखो। उनका कैसे मारूं, कैसे मारूं, तो इनको आत्मा देखो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं। दूसरा अध्याय पूरा आत्मा पर है। आत्मा मरती नहीं, इसीलिए अगर आत्मा देखेंगे तो आप सहज तीर कमान चलाएंगे, तीर चलाएंगे, क्योंकि आप किसी को मार नहीं सकते हो, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। लेकिन ये उनकी बुद्धि में स्ट्राइक नहीं हुआ। आत्मा यही कहा, आत्मा कैसे देखूं, इतना बड़ा शरीर, 6 फीट लंबा शरीर, उसमें आत्मा देखूं, कैसे देखूं? शरीर ही दिखाई देता है। तो आत्मा देखो, आत्मा देखो, ये उसकी बुद्धि में नहीं बैठा, क्योंकि मोह तो था ना। फिर भगवान ने दूसरी युक्ति रची कि आप कौन हो, आप क्षत्रिय हो। उसको अपना स्वमान याद दिलाया, क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? धर्म पर ये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो तुमने वायदा किया है वो तुमको निभाना है, तुमको लड़ना है, धर्म की रक्षा करनी है। ये तुम्हारा कर्तव्य है, इस कर्तव्य से दूर मत जाओ, नहीं तो कायर कहलाओगे। तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। पहले का उनको देखो, आत्मा देखो। तो आप उनके प्रति जो मोह है, राग है, वो खत्म होगा। और फिर खुद को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। फिर अर्जुन फिर भी नहीं समझा, क्योंकि मोह के वश था ना। फिर तीसरी युक्ति भगवान ने रची, और वो युक्ति क्या रची? अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध में विजयी होंगे ना, तो तुमको स्वर्ग का अधिकार मिलेगा। स्वर्ग का अधिकार मिलेगा अगर तुम इस युद्ध में विजयी हुए। और अगर चलो विजयी नहीं भी हुए, तो भी आप स्वर्ग में जरूर जाओगे। अब ये सब बातें सुन करके माना उनको टेम्पटेशन दिया कि ये करने से तुमको कितना ऊंच, उतनी ऊंच प्राप्ति होगी। लेकिन फिर अर्जुन वही बात, वही रटा हुआ बोल रहा है, कैसे मारो, मुझे तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए। ऐसा क्या स्वर्ग जो इनको मार के स्वर्ग लो, ऐसा तो स्वर्ग ही नहीं चाहिए। मैं मारू ही क्यों, क्या करना है स्वर्ग? तो वो जो उनको टेम्पटेशन दे रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे स्वर्ग का, वो भी उसने स्वीकार नहीं किया। फिर भगवान ने देखा अभी इसको वैराग्य दिलाने लिए और क्या उपाय रचूं, तो चौथा उपाय रचा। उनको दिखाया ये सब इनकी मौत निश्चित है, ये सब मरे पड़े हैं, इन सबको मरा हुआ देखो। और दिखा दिया एक शमशान घाट, बिल्कुल सब मरे पड़े हैं, सारे सबकी मृत्यु निश्चित है, और तुम्हारी विजय भी निश्चित है। ये सब मरे पड़े हैं, तुम सिर्फ निमित्त बनो बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ निमित्त बनो। पर वो निमित्त भी कैसे बनो, मोह है। कैसे मैं मारू, कैसे 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 खाली करता रहा। ये सरल रूप में समझा रहे गीता, उसके ऊपर सारा ज्ञान है। फिर जब तब भी नहीं समझा, क्योंकि मोह के वश था ना, वैराग्य उसको नहीं था, स्वर्ग नहीं चाहिए, पर ये करना, यहाँ युद्ध करना, उसमें फंसा हुआ था मोह के वश। फिर जब भगवान ने अपना विराट रूप का साक्षात्कार कराया तब उसको रियलाइज हुआ, ये मुझे कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, मैं तो इसको दोस्त समझ रहा था, मित्र समझ रहा था, पर ये तो स्वयं भगवान मुझे कह रहा है। तब उसकी आंखें खुली, भगवान मुझे कह रहा है और मैं ऐसे बहाने दे रहा हूं। उसी वक्त उसने घुटने टेके, भगवान के आगे हाथ जोड़ा और कहा भी मेरा मोह नष्ट हुआ है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, अब मुझे स्मृति आ गई है कि मुझे क्या करना है। तो बाबा यही तो कह रहे हैं, यही तो गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, भगवान हमें कह रहे हैं बच्चे सर्व संबंध मेरे से जोड़ो, सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, इस मन को मेरे में लगाओ, कितनी बार का तो मुझे याद करो तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, तू मेरे पास चले आओगे। अब ये डायरेक्ट भगवान हमको ये सब कह रहे हैं, बाबा की मुरली क्या है, डायरेक्ट। कभी कभी ब्रह्मा बाबा भी हमें कहते हैं, बच्चों को निराश न हो इसीलिए अपनी बातें भी सुनाते हैं। अब सोचो बाबा कई बार साकार मुरलियों में कहते हैं, बच्चे मासी का घर नहीं है। मैं भी बाबा को याद करने बैठता हूँ तो भोजन पर बाबा को मैं सोचता हूँ मैं बाबा को याद करूँ बस और कुछ नहीं, पर फिर भी मन भाग जाता है। बच्चे मैं भी पुरुषार्थी हूँ, बच्चे ये इंजन सबसे आगे है, तूफान सबसे पहले इस इंजन को लगेगा, फिर उसके बाद डब्बों को लगेगा। इसलिए बच्चे भले तूफान आए लेकिन मन तक आए पर कर्म में मत लाओ। कल भी मुरली थी, आज भी मुरली थी, आज भी बाबा ने कहा कर्म तक नहीं लाओ, नहीं तो पाप बन जाएगा। अब पापों को दग्ध करना है, धर्मराज की सजाएं नहीं तो खानी पड़ेगी। तो भगवान हमको वो इतना प्यार देता है जिस प्यार के आधार पर सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं हम। मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है जब मैं फॉरेनर्स का मैं ट्रांसलेशन करती हूँ तो बाबा की अव्यक्त मुरली चलती थी तो जो पहला महावाक्य होता था, आज बाबा किसको देख रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, तो पहली लाइन इतनी लंबी जो थी पूरे बाबा हम बच्चों को कितनी टाइटल दे रहे हैं, वो टाइटल बाबा पहले कहते हैं फिर लास्ट में कहते हैं कि ऐसे बच्चों से मिल रहे हैं। तो अब मुझे ट्रांसलेशन करना होता है तो फिर क्या कर, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी अपोजिट है, हिंदी में जो वर्ब है क्रिया है वो लास्ट में आती है ना, पर इंग्लिश में वो पहले आती है, बाबा इज लुकिंग एट, बाबा इज मीटिंग, है ना, वो क्रिया पहले आती है इंग्लिश में और हिंदी में बाद में आती है। तो इतना लंबा वाक्य, तो अब जब तक वो क्रिया आए, बाबा देख रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो लास्ट में आएगी, आएगा वाक्य में, तब तक मैं क्या बोलूं, बाबा इज क्या तो मैं लिखती थी, क्योंकि लिख करके फिर यानी तो भूल जाएगा। तो जब मैं लिखती थी तो उस सब इतना नशा चढ़ता था कि देखो आज बाबा किन बच्चों से मिल रहे हैं, किन बच्चों को देख रहे हैं, जो भी बाबा कहेंगे, लेकिन नशा तो चढ़ता है ना, और मैं वो हूँ, बाबा मुझे कह रहे हैं, तो लिखते लिखते नशा चढ़ती है, नहीं कि बाबा ने क्या कहा लिखो लिखो, ऐसे नहीं, नशा चढ़ता था, ये मेरे लिए है, तो बताओ इतनी बाबा महिमा करेंगे बच्चों की, तो कितना प्यार है भगवान का बच्चों से। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, ये बच्चे हाँ, कितने बाबा हमारे हमको टाइटल्स देते हैं, वो प्यार। तो भगवान का प्यार हमें मिल रहा है। कोई कहे ना कैसे पता चले प्यार मिल रहा है, मुरली पढ़ो, मुरली से आपको प्यार दिखाई देगा, अनुभव होगा। और फिर बाबा कहेंगे बच्चे अब इस प्यार प्यार में अब ये भी जो मैं कहता हूं वो करो। जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चे से कोई कार्य करवाना होता है, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत होशियार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ये महिमा कर कर करके फिर कहेगा बेटा अभी ये काम करो, हाँ मम्मी हाँ, क्योंकि प्यार मिला ना, महिमा हुई। तो महिमा करेंगे तो फट से वो काम करेंगे। परंतु अगर आप कहेंगे तुम तो नालायक हो, तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो फलाना है, तुम सुनते नहीं हो, अब ये करो, नहीं करूंगा कौन करेगा, करेगा क्या आप उनको, उनको उनकी ग्लानी करो, गाली दो और फिर कहो ये काम करो, क्यों नहीं करूंगा। कोई व्यक्ति आए और उसको आपको, आप उसको भोजन परोसना है परंतु 10 गालियां दे करके फिर कहो खाओ, ओके भाई भूखा रहूंगा लेकिन ये नहीं खाऊंगा, भूखा रहने को तैयार हूं क्योंकि स्वमान तो हर एक को प्रिय है ना, अपना भूखा रहना पसंद है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के हाथ का क्या खाएंगे हम, क्योंकि हर आत्मा तो प्रेम स्वरूप है ना, वास्तव में है तो प्रेम स्वरूप। तो इसीलिए भगवान हमको बहुत प्यार देते हैं, पर फिर धीरे से कह देते हैं बच्चे ये करो, पवित्र बनो, मुझे याद करो, ये मतलब जो भी श्रीमत हमें देते हैं, पर पहले पवित्र, पहले बहुत प्यार देते हैं। फिर अगर माँ देखती है कि बच्चे को मैं प्यार तो बहुत दे रही हूँ फिर भी नखरे कर रहा है, नटखट है, सुनता नहीं है, हाँ मम्मी करूंगा, हाँ देखूंगा, ना भी नहीं कर रहा है, जब बाबा कहते गे 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 हाँ गे कहते हाँ मम्मी करेंगे करूंगा, तो फिर मम्मी दूसरा कदम उठाती है, क्या करती है, उसको टेम्पटेशन देगी, देखो तुम अभी पढ़ोगे ना, अच्छे नंबर लाओगे, फर्स्ट नंबर आओगे तो तुमको साइकिल देंगे, हाँ क्या बोलती है माँ, हाँ तुमको ये देंगे, तुमको वो देंगे, उनको प्रलोभन देती है। अब वो बच्चा देखता है ये मिलेगा ये मिलेगा तो क्या करता है, हाँ तुरंत पढ़ने लगता है। तो भगवान भी हमें यही कहते हैं ना, तुमको स्वर्ग की राजाई मिलेगी, तुम इतने विश्व के मालिक बनोगे। क्या क्या बाबा सुनाते हैं, क्या तीनों कालों का ज्ञान देते, तुम ही ऐसे थे, तुम ही विजयी रत्न हो, ये तुम ही हो, तुम फिर बनोगे, ये सब तुम्हें मिलेगा। तो हम ऐसे कहेंगे क्या बाबा आपको स्वर्ग चाहिए ही नहीं, ऐसे कहेंगे क्या, हा? कहेंगे क्या। कई लोग हम लोगों को कहते ये प्रश्न पूछते हैं, खास करके सन्यासी जो होते हैं ना, वो कहेंगे आप लोग स्वर्ग 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 कहते, हमको तो स्वर्ग चाहिए ही नहीं, ये तो आप लोगों के अंदर लोभ है जो स्वर्ग स्वर्ग चाहिए, हमको तो बस मोक्ष चाहिए, हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं, संसार का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं ये कोई वैराग्य नहीं है, ऐसा सन्यास भगवान हमको नहीं सिखाते, भगवान तो हमें बहुत प्राप्ति कराते हैं। तो लोभ तो वास्तव में उनका है, क्योंकि हमको मोक्ष मिल जाएगा, बस हम मुक्त हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, फिर हमारे शिष्यों का क्या होगा, उनके जो गुरु बन के बैठे हैं। हम तो, हम लोग क्या कहते हैं, हम सबको स्वर्ग में ले जाएंगे। तो लोग जास्ती किसका, उनका हुआ ना, क्योंकि हम जाएं हम जाएं, हमको मोक्ष मिले हमको मिले, हम ब्रह्मलीन हो जाएं, हम ब्रह्म में समाएं, तो हम समाएं और हमारे शिष्यों का हल। और यहां पर बाबा कहते हैं सबको ले जाना है, सबको ले जाना है, सबको ले जाना माना सबसे प्रेम है, अपने लिए केवल लोभ नहीं है, केवल मैं नहीं अकेला स्वर्ग का राजा बनूंगा, प्रजा भी तो चाहिए ना, तो सबको बनाना है, नया विश्व बनाना है उसके लिए मेहनत करनी है। तो इसीलिए बाबा हमको प्रलोभन इसलिए नहीं देते कि केवल मैं बनूंगा। इसलिए बाबा जब भी कोई बात कहते बच्चे ये करो, केवल करो नहीं कहते, कराओ कराओ, पढ़ो पढ़ाओ, ये करो ये कराओ, सेवा करो सेवा कराओ। कराओ क्यों कहते हैं, करो केवल क्यों नहीं कहते, केवल पढ़ो क्यों नहीं कहते, पढ़ाओ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे आप समान बना सकेंगे, आपकी समान बनेंगे तो वो आप सब उस स्वर्ग में आएंगे, तो सबको आप बना रहे हो। इसीलिए बाबा ये प्रलोभन देते हैं। और ये लोभ नहीं है, ये लोभ नहीं है, ये सबका भला चाहते हैं भगवान। लेकिन तेरे भाणे सर्व का भला, चढ़ती कला हमारी जिसके भाणे सर्व का भला। और फिर बाबा देखते हैं कि बच्चे तो थोड़े और नटखट हो रहे हैं, मानते ही नहीं हैं, कितने बहाने दे रहे हैं। बहानेबाजी तो बहुत अच्छी आती है, बाबा मुस्कुराते भी हैं जब बच्चे बाबा को बहाने देते हैं। लगता है ना बाबा के, बाबा को कहते हैं बाबा आप शरीर में आके देखो तो सही, आपको तो अपना शरीर है ही नहीं आप भी कभी ऐसे हमारी तरह बन के देखो तो सही। तो बाबा क्या कहते हैं, मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं, क्योंकि बच्चे इतने भोले हैं, कितने भोले हैं। तो फिर बाबा तीसरा रूप लेते हैं, कौन सा, प्रलोभन से भी मानते नहीं है। तो फिर आखिरी कौन सा रूप है, जैसे माँ कहती है पहले प्यार करेगी फिर प्रलोभन देगी, पर फिर भी नहीं समझेंगे तो फिर आंख दिखाएगी। हाँ, करना ही है तुमको, करना ही है, क्योंकि करवाना ही है बच्चे से, करवाना ही है और कराना ही है। तो इसीलिए क्या करेगी, तुमको मार मिलेगी, सजा मिलेगी। तो भगवान भी क्या कहते हैं, तुम नहीं करोगे तो धर्मराज की सजाएं खाओगे। पर वो भी किसमें कितना प्यार भरा हुआ है। तो कई बार ऐसे होता है जैसे माँ होती है बच्चे को कहेगी बेटा ये करो, नहीं मानता है, तो जब वो आखिर नहीं मानता है तो माँ ये नहीं कहेगी मैं मारूंगी, वो क्या कहेगी, कहेंगे डैडी मारेगा। है? कौन मारेगा, माँ तो प्यार करती है पर डैडी मारेगा। तो डैडी मारेगा तो डैडी से डरता है बच्चा तो फिर क्या होगा, हाँ नहीं नहीं डैडी मारेगा, मुझ में ये करना ही है। तो यहाँ बाबा कहते हैं मैं सजा दूंगा, ये नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्मराज सजा देगा। धर्मराज भगवान तो प्यार का सागर है ना। अब धर्मराज शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, जो भी है, पर है तो सही ना सजाएं तो मिलेगी ना। तो या तो है योग बल या तो है सजा बल। अगर योग बल से ही बदल जाएंगे तो सजा क्यों खाएं, पर योग बल से नहीं बदलते, बाबा की आज्ञाकारी नहीं बनते तो फिर सजा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि इस अपवित्र रूप से तो वापस जा नहीं सकते। तो अभी वो समय है बेहद के वैराग्य का, जिसको बाबा कहते हैं मेरा कुछ भी नहीं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ देना है, सब संभालना भी है, कर्तव्य पूरा निभाना है, अपनी रचना को पूरा पालना है, सब कुछ करना है। पर कैसे करना है, कमल फूल समान न्यारा और प्यारा हो करके। छोड़ देना तो बहुत सहज है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, है ना, छोड़ना सहज है ना कि नहीं। दूर बाज खुश बाज, दूर चले गए तो भूल जाएंगे, पर साथ में भी रहना है, उनकी सेवा भी करनी है, तोड़ भी निभाना है, लेकिन फिर भी बुद्धि से न्यारा होना है। ये ज्यादा मेहनत है, या छोड़ना मेहनत है जी, रहना, सब देखना, पर फिर भी फंसना नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं मेहनत मत कहो, मोहब्बत कहो। बाबा के साथ मोहब्बत है तो मेहनत क्या है? क्योंकि भगवान मिला और क्या चाहिए, द्वापर कलयुग में यही तो ढूंढा हमने। भगवान ने अपनी पहचान ही केवल नहीं दी है, लेकिन वायदे किए हैं भगवान ने, लेकिन शर्त भी रखी है। वायदे बहुत किए हैं बाबा की, हर मुरली में कितने वायदे आते हैं। बाबा वायदा करता है, पर शर्त क्या रखते हैं? बच्चे मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, ये वायदा है भगवान का, पर शर्त क्या है? मुझे याद करो। अब ये शर्त हम निभाएंगे नहीं और खाली वायदा याद दिलाएंगे। बाबा आपने ही तो कहा था ना कि मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान रहो, पवित्र और तो पवित्र और योगी बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। बाबा आपने कहा ना स्वर्ग का मालिक बनेंगे, तो ये जो करना है, तो बाबा कहते वैराग्य कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो तो छूटो। पर यहां बाबा ये भी नहीं कहते छोड़ो, छोड़ो भी नहीं, फंसो भी नहीं, नया कुछ भी जोड़ो नहीं। बस ये भी बहुत बड़ी बात है, नया कुछ नहीं जोड़ो, क्योंकि ये भी तो खत्म होना है, तो जोड़ो भी नहीं नया, और जो है उसको छोड़ो भी नहीं, उसमें फंसो भी नहीं, तीनों ही नहीं करो तो क्या करो फिर? चौथी बात हाँ, क्या करो फिर? न छोड़ो, न फंसो, न नया जोड़ो, तो करो क्या आखिर? निभाओ, निभाओ। निभाना बुरी चीज नहीं है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। तो बाबा हमको इतने अधिकार दे रहे हैं उनकी भेंट में, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। और यही बाबा कहते हैं, कल भी बाबा ने कहा मैं भोलानाथ हूं, मैं भोलानाथ हूं, ये तुम्हारा है क्या? कखपन है। और ये भी नहीं कहता मुझे देकर या दे जाओ, ये भी नहीं, रखो अपने पास, पर ट्रस्टी होके रहो बस। इसमें तुम्हारा ही कल्याण है, क्योंकि कल कुछ भी होगा तो आपको दुख तो नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे वो बाबा का था, बाबा ने लिया, मेरा तो था ही नहीं। वो मेरा का तो मोह होगा, इसलिए बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में परिवर्तन का। बाबा ये आपका है, बाबा ऐसे कोई नई बात नहीं है जो कहती हो बाबा ये तेरा है। भक्ति में भी यही कहा, ये तन मन धन सब है तेरा। बस अभी वो बाबा याद दिला रहे हैं कि जो तुमने भक्ति में कहा था वो अभी निभाओ। तो बाबा भी अपना वायदा निभाएंगे, तुम भी निभाओ और बाबा भी निभाएंगे। पर बाबा तब निभाए जब पहले तुम निभाओ, क्योंकि ये भी कायदा है कि परमात्मा हमारे नजदीक तब आएंगे जब पहले हम एक कदम आगे बढ़ाएं। बाबा मदद करो, पर बाबा कहते हैं मदद तब मिले जब तुम हिम्मत रखो। अब हिम्मत नहीं रखनी है, बस बाबा मदद करो, बाबा आपने मुझे मदद नहीं की। बाबा कहेंगे बच्चे हिम्मत रखी? हिम्मत नहीं रखना है, मदद चाहिए। तो बिना हिम्मत के मदद कैसे मिलेगी? एक बच्चा भी, माँ उसको चलना सिखाती है, माँ कहेगी टांग आगे करो, पर वो हिम्मत ही नहीं रखता है तो क्या होगा? मदद कैसे मिलेगी? तो इसीलिए बाबा हमें बेहद का वैराग्य सिखाते हैं। इस वैराग्य से हम क्या बन जाएंगे वो भी बाबा हमें बताते हैं, तो आँख खुल जाती है। चल ओम शांति। चलो ओम शांति ओम शांति ओम
शांति। तो आप सभी को भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य से दीदी ने परिचित कराया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 5 दिन की भट्टी पर आप अटेंशन देना। दीदी का एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।